उन्हीं झिझियाने लगे, प्रभु आपको छोड़कर के हम नहीं रह सकते। देखो ये भी तो एक कार्य है, हम लोग चले जाएंगे जगत अनाथ हो जाएगा, इसलिए आप रह करके भागवत को जगत में प्रकाश करेंगे, इसलिए जाते हैं कि समय आने पर आप हमारे पास नहीं चलेंगे। इसलिए सुखदेव जी को वहां पर छोड़ दिया। अब ये तो हुआ एक कल्प की बात, दूसरे कल्प में जब भगवान आने को हैं, इधर में कलिजुग समाप्त हुआ, कलिजुग आया द्वापर समाप्त हुआ, उसमें पृथ्वी पर चारों तरफ में भगवत भक्ति नष्ट हो गई, स्त्रियों का आभूषण केवल रह गया क्या, सिर के केश, ब्रह्मचर्य के द्वारा उनका होठ लाल रहेगा नहीं, तरह तरह के रंगों को लेकर के होठ रंगी, पुरुषों में कोई पौरुष नहीं रहा, केवल ऊपर से जो गाल बजाया वही साधु बन गया, कोई भजन साधन नहीं। इस तरह से जब तक कि पति उसके अनुकूल है, कुछ देता है तो ठीक है, और नहीं तो उस पतियों को 10 बार 5 बार 20 बार 50 बार भी तलाक दे। आजकल आज हो रहा है, अभी हमारी भारत की संस्कृति कुछ है जहां पर ये कुछ बचा हुआ है, जहां कुछ धर्म तत्व है। इसलिए ये सब जब कलयुग आने लगा, उस समय में परीक्षित महाराज जी को ये चीज हुई, उस समय सुखदेव गोस्वामी जी घूमने लगे जगत में, भगवान के अवतार के तहत घूमने लगे, कहां जाऊं, प्रभु जी ने कहा हमको रहने के लिए, भागवत को प्रकाश करने के लिए, भागवत को कैसे प्रकाश किया जाए, बिना भगवत लीला कथा के वो रह नहीं सकते। घूमते घूमते जहां भगवान की कथा हो रही वहां पर जाएंगे, पहुंचते पहुंचते कैलाश में पहुंचे, वहां पर शंकर जी पार्वती जी को यही भगवान भागवत की कथाओं को श्रवण करा रहे हैं, वहां पर सुन रहे थे, पेड़ के ऊपर में बैठ गए और सुनने लगे। जाति के स्वभाव से यदि तत्व की बातें हो ना, थोड़ा सा तत्व की हम बातें करने लगे तो पहले महिलाएं घूम जाएंगी, सो जाएंगी, आलस्य आएगा, फिर ऐसे हाथ धरेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और फिर जम्भाई आएगी, और फिर ऐसे। पुरुष लोगों का भी आंखों में लाखा मन के पत्थर बैठ जाएंगे, वो आंख नहीं खोल सकेंगे, हरी कथा में ऐसे तत्व की बातें। इसलिए लीला कथाओं के माध्यम से कहने पर कुछ, और बीच बीच में ये एक चटनी दे दी जाती है कीर्तन की, तो जिससे कि लोग जरा ठीक रहते हैं, इसलिए ये कीर्तन हो रहा है, और बीच में सुंदर सुंदर मधुर मधुर कथाएं ये सब कह रहे हैं। तत्व की कहानी यदि कहने लगे तत्व की, बस एक मिनट में सभी सो जाएंगे। इसलिए पार्वती जी सो गई, जब सृष्टि का प्रकरण आया और कपिल देवहूति वाला संवाद आया तो धीरे धीरे वो सो गई, और सुख पक्षी जो तमाल वृक्ष के वहां पर पेड़ पर बैठा हुआ था वो हुंकारी भरने लगा, हाँ बहुत ठीक, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, हूं हूं। और किस रूप में, पार्वती जी के ठीक बोली में वहां पर भी नकल कर लिया पार्वती जी की बोली, और कहने लगा, शंकर जी सोचे जी हमारी प्रिया जी सो रही जग रही हैं और बड़ी प्रेम के साथ में सुन रही हैं। जब भागवत शेष होने को आया, खत्म होने को आया, उस समय में हठात जग गई, जगने से बोली, अरे प्रिय मैं तू भागवत की कथा सुन नहीं सकी, मैं पहले स्कंद का थोड़ा सा मैंने सुना था, इसके बाद तो मैं कुछ सुनी नहीं, फिर से हमसे कहिए। तो सुना कौन, सुना कौन, तुम्ही तो हुंकारी भर रहे थे, नहीं मैं सुना ही। शंकर जी ने देखा चारों तरफ में, खोजा कौन हुंकारी भर रहा था, खोजते खोजते कहीं नहीं देखा, तो अंत में देखा जो पेड़ के ऊपर में घने पत्तों की हरियाली में छिपा हुआ वो सुख पक्षी बैठा हुआ है। अरे ये तो बड़ा अनाधिकारी, भागवत सुन लिया, अनाधिकारी को भागवत का नहीं श्रवण करना चाहिए, सुन लिया, अच्छा मैं इस अनाधिकारी को अपने त्रिशूल से जरूर मारूंगा, ऐसा कहकर शंकर जी उसका पीछा किया और वो भागा। वैसे केदारनाथ से वहां से कैलाश से बद्रीनारायण अधिक दूर नहीं है, किंतु पहाड़ ऐसी चोटियां हैं जो जाने में एक महीने लग जाएंगे पैदल, हम लोग वहां पर गए हुए हैं, बहुत दूर से जाना पड़ता है, और यदि कोई उड़ने वाला हो झट पहुंच जाएगा, और इससे अधिक 3-4 मील भी नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी उड़े, और उनके पीछे पीछे शंकर जी त्रिशूल लेकर के चले। शंकर जी जिसका पीछा करते हो और वो बच सकता है भला? कामदेव भी जल करके भस्म हो गए मिनटों में और ये त्रिशूल लेकर के चल रहे हैं। चलते चलते जब वो व्यास आश्रम में पहुंचा, वहां पर व्यास देव जी अपनी पत्नी गुटका जी को, बीटका जी को भगवान की यही लीला कथा सुना रहे हैं, भागवत की कथा सुना रहे थे, और वो आश्चर्यचकित होकर के इन कथाओं को मुख खोल करके आए, क्या हुआ ऐसे खोल करके सुन रही थी, इतने में उनके मुख में वो प्रवेश कर गया, भीतर पेट में चला गया। और एक दो वर्ष नहीं, बहुत दिन रहा। इधर में शंकर जी आए झट, अरे व्यास जी एक तोते को देखा ही है घर में उड़ता हुआ आया। अरे भोले शंकर जी, किस लिए आप उस सुख को ढूंढ रहे? तो मैं इसलिए कि अनाधिकारी होकर के इस भागवत को जो पार्वती जैसे लोगों के लिए ही वो कहने लायक है, और इस पक्षी ने सुन लिया इसलिए उसको मारने के लिए दौड़ा हूं, मारने के लिए आया। अरे भोलेनाथ जी, भागवत सुनने का फल क्या होता है? वह अजर अमर हो जाता है। तो यदि अमर अजर हो गया ये सुख, तो आप उसको त्रिशूल से मारेंगे कैसे? तो शिव जी मुस्कुराने लगे और फिर व्यास जी से वंदना इत्यादि करके फिर लौट गए। वही सुख एक 12 वर्ष तक, या उसको कहते हैं 16 वर्ष तक अपनी मैया के गर्भ में रहे और पूरी भागवत वेद वेदांत उपनिषद भी सुने। और पहले के तो उनके सुख ही हैं, कुछ होने के बाद में व्यास जी बोले, आप कौन हैं महात्मा जी? अपनी मैया को क्यों कष्ट दे रहे हैं? 12 वर्ष तक या 16 वर्ष तक आप इसी में रहे, आप जो हो निकल आइए। तो फिर से सेवा आ जाए, मैं ऐसे नहीं निकलता। यदि माया संसार से हट जाए एक सेकंड के लिए, तो मैं उसमें निकल सकता हूं, माया में मैं नहीं आ सकता। अभी माया, माया माने क्या? माया माने आसक्ति। मैं और मोर तोर तय माया, जो मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं किंतु शरीर को मैंने मैं मान लिया और शरीर से संबंधी वस्तुओं को मान करके उसमें आसक्त हो रहे हैं, दिन रात उसी में, और संसार में कोटि कोटि जन्मों से इसी में घूम रहे हैं, जैसे कि बच्चे ने बतलाया, जैसे कपिल देव जी ने बतलाया। याद नहीं रहती फिर उसी में, कभी सुअर आद होकर के आए, कभी गधे होकर के आए, न जाने फिर गधे और घोड़े होंगे, कोई भी पता नहीं। मछली होंगे तो बंगाल की स्त्रियां या पश्चात देशों की स्त्रियां भी ऐसे ही जीवित अवस्था में ही ऐसे ही छुरी से रगड़ करके और जलते हुए तेल में डाल देंगे और उसको खा लेंगे। ऐसे ऐसे जन्म होंगे फिर, ऐसा मत सोचो जैसे मैं उनका खा रहा हूं। मीट मीट जिसको खा रहा हूं वो खाएंगे, मांस मांस खादती, जिसका मांस मैं खा रहा हूं वो जरूर खाएंगे, रिक्रिएशन जरूर होते होगा। इसलिए भाइयों भगवान का भजन करें। तो अब सुखदेव गोस्वामी जी बोले, जैसे मैं नहीं निकलता तो मैं माया को हटा देता हूं, आपकी बात पर मुझे विश्वास नहीं। किस पर विश्वास है? कृष्ण यदि स्वयं आकर के कहें तो हो सकता है। तो व्यास जी ने उसी समय में ध्यान किया भगवान का और कृष्ण वहां से पहुंचाए। कृष्ण ने कहा, जे तुम कौन हो भाई? उसने निकल आओ माता के गर्भ में, कष्ट मत दो। तो कृष्ण ने कहा, जे मैं ऐसे नहीं आता, यदि कृष्ण आकर के कहें स्वयं, जो माया को मैं हटा देता हूं, तो मैं निकलूंगा। कृष्ण ने कहा, जे मैं ही कृष्ण हूं, मेरी बात पर विश्वास करो, और मैं माया को इतने देर के लिए हटाता हूं कि एक तलवार की पतली धार पर एक सरसों गिराया जाए तो जितनी देर तक वो ठहरेगा, कितना देर? एकदम नहीं, उतनी देर के लिए मैं हटाता हूं, बस निकलाओ। झांसी साथ में उन्होंने माया को हटाया और साथ साथ में वो माता के गर्भ से निकले और उसी समय निकल पड़े करके वन में चलने लगे। जन प्रब्रजन तम अनुपेत, उनका कोई संस्कार नहीं हुआ, नाड़ी छेदन भी नहीं हुआ, वो भी संस्कार भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, और घर छोड़ करके चले। कौन किसका माता, कौन किसका पुत्र, कौन किसका बेटा? सुखदेव गोस्वामी जी के पिताजी व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़े, हा बेटा हा बेटा, हा पुत्र हा पुत्र। सुखदेव गोस्वामी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु जंगल से प्रतिनिधि आई, प्रतिध्वनि आई, क्या हा बेटा हा बेटा, माने क्या, कौन किसका पुत्र? ये मोह है वो कारण, मोह है केवल। सभी प्रभु के दास हैं, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान को भूला, इसलिए उनकी ये दुर्गति हो रही है संसार में पुनः पुनः जन्म मरण का। इसलिए उनके पीछे पीछे भगे और ये आगे आगे चले। कुछ थोड़ी देर के जाने के बाद में एक सुंदर सरोवर था, उस सरोवर में बहुत सी अस्पराएं नंगी होकर के स्नान कर रही थी। उस समय में सुखदेव गोस्वामी जी जा रहे हैं, 16 वर्ष के लड़के और नंग धड़ंग जा रहे हैं, उनको देख करके उनको कुछ नहीं हुआ, स्नान करती रहीं, खेलती रहीं, क्रीड़ा करती रहीं। किंतु जब व्यासदेव बूढ़े के बूढ़े, उनकी लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ियाँ और बहुत काफ़ी उम्र वाले, उनको जब देखा तो वो झट उसमें से निकल आई और कपड़े पहन करके उनको दूर से प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात बेटियों, तुम हमारी बेटी की बेटी की बेटी के बेटी के बराबर हो और मैं इतना बूढ़ा हूँ और तुम हमें देख करके सब चाह करके वस्त्रों को पहन करके हमें प्रणाम किया और हमारा बेटा 16 वर्ष का नौजवान तगड़ा और उसको देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई। उन्होंने कहा जी ऋषि महर्षि जी आपको प्रणाम है, किंतु वो तो लकड़ी के समान, सूखी लकड़ी के समान चला गया, हमारी तरफ में देखा भी नहीं कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि लकड़ी हैं कि घास हैं कि काठ हैं कि क्या हैं, और आप पूछ क्यों रहे, हमें आप स्त्री के रूप में देख रहे हैं, उसने तो स्त्री के रूप में देखा नहीं, इसलिए हम लोग ऐसा आप पूछ रहे हैं। आपको होश है कि हम स्त्री है वो पुरुष है, वो पुरुष है, उसको आत्मज्ञान सब समय है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी इस कथा को कह रहे हैं, इसलिए कैसी कथा होगी, अद्भुतपूर्ण ये कह रहे हैं। सारे शास्त्रों का ज्ञान गागर में सागर की तरह ही श्रीमद् भागवत में बैठा है। रामायण में जो आप चौपाइयां देखते हैं उसी भागवत का ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद है। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा तुलसीदास जी थे, इसलिए रामायण और महाभारत इसमें श्रीमद् भागवत में और विशेष अंतर नहीं है, केवल उपासना का तारतम्य है। इनके राम है और इनके कृष्ण हैं, किंतु दोनों भी एक हैं, इसको मैंने कल थोड़ा सा बतलाया था, आगे हम बतलाएंगे। आज यहीं तक अपनी कथा का हम विश्राम देते हैं, कल और भी आप लोग संख्या में आएंगे और इन चीज़ों को सुनने की चेष्टा करेंगे। कल और परसों हम लोग रहेंगे, इसके बाद में तो हम लोग भारत में चले जाएंगे। तो जो सुखदिमान व्यक्ति हैं, सौभाग्यवान जीव है, इनको सुनेंगे हम, इसके इसकी दक्षिणा भी कुछ नहीं चाहते, आप लोग सुनिए, इसमें जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करने की चेष्टा करें। आज यही निवेदन करके हम लोग इसको समाप्त करते हैं, अभी कीर्तन के बाद में आरती होगी, आप लोग जाएं।